आईएएस बनने का स्वप्न देखने वाले मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे 100 करोड़ टीके की कहानी के बारे में कुछ कहानियां सुनाना चाहूंगा। 100 करोड़ टीके की कहानी। लेकिन इससे पहले दो सूचनाएं। पहली सूचना तो यह है कि शायद आप लोगों ने कल के अखबार में पढ़ा भी होगा कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने एक हेल्पलाइन जारी की है, फ्री हेल्पलाइन। और ये जो फ्री हेल्पलाइन है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, हैंडीकैप्ड, ये जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, जो यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए ये हेल्पलाइन है। तो हेल्पलाइन का जो नंबर, और ये बिल्कुल फ्री है, जो नंबर है वह मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सुविधा के लिए है। ये हो सकता है कि आपने ये नोट कर लिया हो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी ओर से भी बता देना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप सबका वक्त ले रहा हूं, माफी चाहूंगा। 1800 11 87 11, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1800 11 87 11। दूसरी जो सूचना है फ्रेंड्स, मैंने पिछले सप्ताह आप सबसे एक वायदा किया था और आपसे कहा था कि क्या आप मेरे साथ प्री 2022 की तैयारी करने को तैयार हैं। बहुत से लोगों ने अपनी सहमति दी और आपको लग रहा होगा कि इस सप्ताह तो सर ने कुछ बताया ही नहीं, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। आप बिल्कुल सही, आपकी अगर ये शिकायत है तो बिल्कुल जायज है, मैं आपकी शिकायत को सर माथे लेता हूं। इस सप्ताह कुछ घटनाएं इस तरीके की घटित होती रही और कुछ पिछली घटनाएं भी थी कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल पाया कि मैं तैयारी के बारे में आपसे बात कर सकूं। तो मैंने निश्चित तौर पर आप सबका थोड़ा नुकसान किया है, लेकिन कोई भी नुकसान हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति की गुंजाइश तो रहती ही है, तो मुआवजा दिया जा सकता है। तो अब मैंने यह निर्णय लिया है कि जो आने वाला सप्ताह है, जो सोमवार से शुरू होता है शुक्रवार तक, इसे अब हम प्री 2022 के वीक के नाम से मनाएंगे। मैं खासकर 2022 की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, इसी पर एक्सक्लूसिवली बातें करूंगा। हाँ, इस बीच में यदि कोई घटना घटित होती रही जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो बस थोड़ी सी चर्चा मैं उसकी करूंगा, अदरवाइज नहीं, राइट? तो मुझे लगता है कि शायद इस बात को सुनने के बाद आपका आक्रोश कुछ न कुछ तो मेरे प्रति कम हुआ ही होगा। तो आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, और सच पूछे तो आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि हमारे देश ने, जी हां, हिंदुस्तान ने नहीं, भारत ने नहीं, हमारे देश ने, जी हां, है तो भारत और हिंदुस्तान ही, 100 करोड़ टीके, और ये जो टीके हैं ये कोविड के टीके हैं, लगाने में सफलता हासिल की है। और यह जो दिन है, यह है 21 अक्टूबर 2021। बंबई में हादसा हुआ, आतंकवादी गतिविधियां हुई, वो डेट हमारे दिमाग में दर्ज है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त किया गया, वह डेट हमारे दिमाग में दर्ज है। तो मुझे लगता है कि यह डेट भी हमारे दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। केवल निगेटिव घटनाओं की या इस तरह की तकलीफ पहुंचाने वाले घटनाओं की डेट से ही हमारा दिमाग भरा हुआ क्यों हो। एक बहुत ही खूबसूरत तख्ती लटका लीजिए, 21 अक्टूबर, और वर्ष भी है 21 2021। दोस्तों, वैसे सामान्य रूप से जब आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि ठीक है, एक आंकड़ा है, 100 करोड़ आंकड़ा हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके पूरे की पूरी अगर आप प्रक्रिया पर जाएंगे तो आपको आश्चर्य करना चाहिए और खुद अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। यह एक अच्छा और ऐसा अद्भुत अवसर है। अद्भुत अवसर इस मायने में भी है कि आप इसे देख रहे हैं, इस मायने में भी है कि आप इस प्रक्रिया के भुक्त भोगी रहे हैं। आपने भले ही कुछ न किया हो, कोविड से आप डर रहे थे, भयभीत थे, उस दौरान जीवन आसान नहीं था, और इसके बाद फिर आपने टीके भी लगवाए हैं, इसलिए मैंने कहा आप इसके भुक्त भोगी भी रहे हैं, आप इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। तो दोस्तों, चूंकि मेरी जो बात है वो बहुत व्यापक रूप में नहीं है और मैं आप सबसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से बात कर रहा हूं, तो पहले मैं आप सबको कुछ संदेश मैसेज देना चाहूंगा, यूं कह लीजिए कि कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 100 करोड़ टीके की सफलता है, अपने आप में अगर हम सिविल सर्विस के सिलेबस के तहत बात करें तो बहुत सारे प्रश्न लिए हुए हैं। प्रश्न लिए हुए मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें समाहित हो जाते हैं। मतलब यह घटना, यह सफलता आप कह लीजिए, अपने आप में इतनी व्यापक है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी आप जितने विषयों को लेकर के करते हैं उन सभी विषयों से जोड़कर इस सफलता को देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ आपको इसके टॉपिक्स बता रहा हूं। पॉलिटिकल विल, कोविड की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय। अब अगर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख भी छपा है बिल गेट्स साहब का, तो उन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं कि भारत ने जो इतनी अद्भुत सफलता हासिल की है इसके 5 स्टेप्स रहे हैं। ये लेख आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अभी वो इंग्लिश में आया है लेकिन हिंदी में भी इसका अनुवाद, इसके जो तथ्य सार होंगे वो हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि उन्होंने कौन कौन से 5 स्टेप्स बताए हैं ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी व्यवस्थित तरीके से हो सके। तो उसमें उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप बताया है वो है पॉलिटिकल विल। आगे चल करके अभी मेरे पास अवसर नहीं है कि मैं इन्हें आपको समझाऊं कि पॉलिटिकल विल क्या है और कैसे इसने काम किया और कैसे इसी पॉलिटिकल विल में एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी शामिल है। उस पर हम लोग आगे चल करके हो सका तो धीरे धीरे बातें करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पॉलिटिकल विल, राइट। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन डाइमेंशंस की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं जिनकी तैयारी आपको करनी चाहिए। कुछ लिखे हुए फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, वहां से आप ढूंढ सकते हैं, डिस्कशंस में भी ये चीजें आ सकती हैं। तो अब आप देखें कि भारत ने इतनी सफलता हासिल कैसे की जिसको देख करके दुनिया चकित है, डेफिनेटली चकित है। आसान काम नहीं था, वो भी इतने कम समय में। शुरुआत इसकी की गई है 16 जनवरी से जब टीके लगने शुरू हुए और 21 अक्टूबर तक हम 100 करोड़ के डेटा को टच कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है और इसका श्रेय आपको भी है। तो दोस्तों अब आप केवल टॉपिक्स देख लीजिए। पॉलिटिकल विल, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि इसमें पॉलिटिकल विल का क्या रोल रहा है, कैसे रहा है। और याद रखिए कि जब हम पॉलिटिकल विल कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं विल ऑफ द पीपल ही होती है। तो विल ऑफ द पीपल ये कैसे बना, मैं आपको केवल संकेत दे रहा हूं जहां से आप पॉलिटिकल विल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ तथ्य निकाल सकते हैं। इसके बाद है फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या रहा, राइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखना यह है कि हम कैसे लोगों तक पहुंच पाए। इतना बड़ा देश, दूर दराज में लोग रह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे हमने ये सब किया। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल हेल्थ सेक्टर है और एक मैं आपको बहुत ही खूबसूरत डेटा यहां देना चाहूंगा, इसे आप नोट कर लें। ये डेटा मुझे अखबार से ही मिला है कि हमारे यहां अभी 28 लाख आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। ये बिल्कुल नीचे का पायदान है हमारे इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉप का जो है वो क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट और जो दूसरे हैं, हम कोवैक्सीन ये सब कोविशील्ड वगैरह तैयार कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन है, यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है। और इसके बाद फिर वो नीचे तक होता चला जाता है। कैसे संभव हुआ इसे आप देखिए। इसके बाद फिर आप अगर इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो फिर सप्लाई चेन आपको दिखाई देती है। यहां तक कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। फिर वो सप्लाई चेन, जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है और दूसरा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। सप्लाई चेन पूरी तरह से इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इसका चैलेंज था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, और हिंदुस्तान जैसे उष्णकटिबंधीय देश में, और ये जो पूरा दौर रहा है देखिए, ज्यादातर दौर जनवरी से इधर देखेंगे तो ठीक है, थोड़ी बहुत शुरुआत में मौसम थोड़ा बहुत ठीक रहा होगा, इसके बाद तो गर्मी का भी दौर निकला है, फिर बरसात का दौर निकला है, और बरसात जो है एक तरह से ग्रीष्म ऋतु ही होती है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। सप्लाई चेन कैसे हुआ, वहां प्रोडक्शन से लेकर के और कैसे बिल्कुल दूर दराज के गांव तक उस दवाई को पहुंचाया गया। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दवा इंजेक्शन लगा दिया गया तक की बात करते हैं, लेकिन यहां हम सप्लाई चेन के तहत पहुंचाया गया इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद है पीपल पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली बिना पीपल पार्टिसिपेशन के ये नहीं हो सकता था। तो लोगों ने कैसे सहयोग किया, और इसी के तहत आप मीडिया का भी रोल ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अफवाहें उड़ी कि नहीं भैया ये नहीं लगवाना है, इससे डेथ हो जाती है, फलाना है, और इस तरह के अखबारों में काफी कुछ खबरें आई। उनको कैसे समझाया गया, कैसे बताया गया, इस पीपल पार्टिसिपेशन में आपको सब देखना होगा कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल थे, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे वो संसद के हों, उन्होंने क्या कदम उठाया, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से किस तरह की कोशिश में लगी रही, हमारे पंचायतों का क्या रोल रहा, हमारे जो एनजीओज थे वो क्या करते रहे, ये सब के सब पीपल पार्टिसिपेशन में आएंगे। आप चाहे तो मीडिया को अलग से भी लेकर चल सकते हैं। आप देखिए कि इस बीच में लगातार दूरदर्शन तो खैर इस काम में लगा ही रहा, हमारे एक्सपर्ट आते रहे, लोगों को बताते रहे, समझाते रहे। रेडियो न्यूज में आप देखिए कि लगातार इस पर रोजाना खबर होती थी, खबरों की शुरुआत ही इसी से होती है। तो ये सारे वो तथ्य हैं जो आपके आंसर में आने चाहिए अगर प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों केवल यही नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। किस तरीके से हम वहां के लोग फंसे हुए विदेशों में हमारे लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, कैसे हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं, उनको दवाइयां दे रहे हैं, अपने यहां के कार्यकर्ता वहां भेज रहे हैं, कितनी बड़ी बात थी है। जब हमारा देश खुद इन संकटों से जूझ रहा है, ऐसे दौर में हम अपने संकटों से जूझते हुए उनकी भी मदद कर रहे हैं, तो इसका इंटरनेशनल रिलेशंस पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा। और अब जबकि हमने 100 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, तो डेफिनेटली इसने पूरी दुनिया के देशों के दिमाग में भारत की जो छवि है उसको और उजला कर दिया है, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद टेक्नोलॉजी, आप देखिए कि जो कोविड का जो बकायदे जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया उसने तो कमाल कर दिया। कैसे कमाल किया ये आपको देखना है। आप बकायदे जहां टीका लगवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस पर, फिर आप कहां हैं, कहां कोविड के पेशेंट ज्यादा, क्या कमाल कर दिया उस प्लेटफॉर्म में। उस प्लेटफॉर्म ने मतलब अद्भुत प्लेटफॉर्म था ये हमने डेवलप किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो टेक्नोलॉजी का भी पक्ष है, और डेफिनेटली फोर्थ जो आपका पेपर है एथिक्स का भी है, कि जब ये सब कुछ किया जा रहा था तो किस तरह के नैतिक संशय पैदा हो रहे थे, जिसे आप एथिकल डिलेमा कहते हैं। सरकार को निर्णय लेने में दिक्कत जा रही थी, प्रशासन को निर्णय लेने में संकट जा रहा था, अस्पतालों को निर्णय लेने में परेशानी हो रही थी, किस पेशेंट को लें, किस पेशेंट को छोड़े, क्या करें, वीआईपी है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां, कितने सारे संशय थे। तो आपके फोर्थ पेपर का भी इसमें सब्जेक्ट बन जाता है, टॉपिक बन जाता है। और इसी तरह से कि इस पूरे के पूरे समस्या के निदान के दौरान एथिक्स वैल्यू या हमारे जो जीवन के मूल्य होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे थे, कर भी रहे थे कि नहीं रहे थे, किस किस तरह के संकट उपस्थित हुए। तो दोस्तों आप देखिए कि ये जो एक घटना है कितने सारे विषयों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो मुझे केवल अभी आपको उन विषयों की तथ्यों की जानकारी देनी थी, बस बाद में जब समय मिलेगा तो किसी किसी विषय को उठा करके हम लोग बातें करते रहेंगे। इस बीच में मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि प्लीज जब भी आप अखबार पढ़ें या कहीं कुछ ऐसा सुनते हैं तो देखें कि इसमें एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या मिल रहा है और उसे नोट कर लें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, गुलाब सिंह चंद्रा, अदिति वर्मा भागल हरियाणा से, और महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, 2 दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।